محسن اسلام سید البدھا حضرت ابو طالب علیہ السلام پر زمانے کی نظر اسی وقت سے تھی جب انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری قبول کی تھی اور نبی کریم کی نگہداشت و نصرت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی دور سے مخالفین اسلام کی نظروں میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کھٹکنے لگی تھی۔ جب اسلام نے اپنا اثر دکھایا اور شخصیت پرست قبائل اسلام کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر یہ منافقین سازشیں کرنے لگے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے جو خدمات انجام دیں اور پھر ان کے بعد ان کے فرزند حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے محافظ اسلام اور محافظ رسول کی حیثیت سے اپنے والد کی جد و جہد کی تکمیل کی اور آخری سانس تک اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ انہوں نے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر، جبکہ وہ ابھی کم سن تھے، رسول کی دعوت پر لبیک کہہ کر ان کا ساتھ دینے کا اقرار کر لیا تھا اور تمام عمر ساتھ دیتے رہے۔ اسلامی جنگوں میں عرب کے بے شمار سورما تیغے امیر المومنین علیہ السلام سے واصل جہنم ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کفار و منافقین اور یہ مشرکین پہلے تو ابو طالب علیہ السلام کے اور بعد میں مولائے کائنات کے دشمن ہو گئے، اور دشمنی کا یہ سلسلہ بعد وفات رسول کھل کر سامنے آ گیا۔ مولائے کائنات کو خلافت سے محروم کیا گیا، شہزادی کا حق چھینا گیا، گھر کو آگ لگائی گئی، ظلم کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ اور پھر یہ کینہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے قاتلانہ تحریک کی صورت میں نمودار ہوا، اور جب دربار شام میں یزید کے سامنے اہل بیت اطہار کو قید کر کے لایا گیا تھا تو اس نے اشعار میں کہا تھا کہ کاش میرے بدر و احد کے آبا و اجداد ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کیسے انتقام لیا، یعنی رسول اللہ نے میرے آبا و اجداد کو جنگ بدر و احد میں قتل کیا تھا، میں نے ان کا بدلہ نبی کی اولاد سے لے لیا۔ یہ اسلام دشمنی کا واضح ثبوت ہے۔ دشمنان دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہوئے اور اس سلسلے میں انہوں نے بے شمار کام انجام دیے، جن میں ایک کام یہ تھا کہ اپنی طرف سے حدیثیں وضع کی جائیں، تیار کی جائیں اور انہیں اہل بیت سے منسوب کر دیا جائے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ اہل بیت کے فضائل کو چھپایا جائے۔ مولائے کائنات کے خلاف احادیث وضع کی گئیں اور ان کی شان میں آنے والی آیات کو دوسروں سے منسوب کر دیا گیا، اور دوسروں کی مذمت میں آنے والی آیات کو امام سے منسوب کر دیا گیا، اور کچھ لوگوں کی فضیلت میں اپنی طرف سے زبردستی روایتیں گھڑ لی گئیں۔ اس سلسلے میں معاویہ نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور معاویہ کس قدر بڑا دشمن ہے اسلام کا، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ اسے مسعودی نے ذکر کیا ہے اور ابن ابی الحدید نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا ہے، تاریخ عاشورہ میں موجود ہے یہ۔ مطرف ابن مغیرہ نے بیان کیا کہ میں اور میرا باپ شام میں معاویہ کے مہمان تھے۔ میرا باپ اکثر معاویہ کے دربار میں جاتا اور اس کی تعریف کرتا، مگر ایک مرتبہ جب وہ معاویہ سے مل کر آیا تھا تو پریشان تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مطرف ابن معاویہ مغیرہ کے باپ نے معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ اب جب کہ تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے، یعنی تم اسلامی خلافت حاصل کر چکے ہو، تو لوگوں سے عدل و انصاف سے پیش آؤ اور بنی ہاشم سے اس قدر بدسلوکی نہ کرو۔ جو معاویہ نے جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ برادر ہاشم، یعنی نبی کریم کے بارے میں بات کر رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتا ہے برادر ہاشم کا نام لے کر ہر روز دنیا اسلام میں 5 مرتبہ آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ اذان کا ذکر کر رہا ہے معاویہ، اذان نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اس طرح سے روایت میں کہا گیا ہے کہ برادر ہاشم کا نام لے کر ہر روز دنیا اسلام میں 5 مرتبہ آواز بلند ہوتی ہے۔ جب تینوں خلیفوں کا نام مٹ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زندہ ہے، تو اس کے بعد کون سا کام کرنے کو رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی مٹ جائے، نعوذ باللہ۔ یہ تھے معاویہ کے عزائم۔ اس نے اپنے عہدیداروں کو حکم دیا تھا کہ جو شخص ابو تراب اور اہل بیت کے فضائل بیان کرے میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس نے ممبروں سے مولائے کائنات پر نعوذ باللہ سب و شتم کرایا۔ خطیب ممبروں سے سب و شتم کرتے، اہل بیت سے براءت اور ان کی مذمت نعوذ باللہ شعار بن گئی تھی۔ عوام تو خطیب کی باتوں پر ہی اعتماد کرتے ہیں، ہزاروں ممبروں کے اجتماع میں کتنے افراد ہوں گے؟ जो सबके सब खतीब की बातों पर एतमाद करते थे। अहले बैत के खिलाफ की जाने वाली साजिशों और जुल्मों सितम की दास्तानें भरी हुई हैं तारीख में। मुख्तसर ये कि मौलाए कायनात और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ऐसी रिवायात तैयार की गई जो कुरान की मुखालफत कर रही हैं, जबकि आइम्मा ने ये उसूल दिया है कि जिस रिवायत की तायद किताब अल्लाह से ना हो वो बातिल है। आइम्मा मासूमी अलैहिस्सलाम की तरफ से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व ईमान के बारे में जो रिवायात आई हैं उनको बयान करते हैं, लेकिन इससे पहले हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा और ज़ौजा मोहतरमा का जिक्र करना है। जनाब फ़ातिमा बिनते अमर मखज़ूम अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम और रसूल अल्लाह की जद्दा हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नूरे मुक़द्दस हमेशा असलाब व अरहामे तैयबा में रहा। आयात व रिवायात की रोशनी में ये बात पाया सबूत को पहुँचती है कि अनवार तैयबा के लिए असलाब व अरहामे तैयब की ज़रूरत है। तो हज़रत फ़ातिमा के ईमान को बयान करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि ये मोहतरमा रसूल अल्लाह के वालिद अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम और मौलाए कायनात के वालिद अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वालदा हैं। अल्लामा अब्दुल्ला अल-क़नीज़ी कहते हैं कि ऐसी मुक़द्दस माँ से हज़रत अबू तालिब को क्या कुछ मिला होगा, इसका अंदाज़ा बाबसीरत उलमाए नफ्स ही कर सकते हैं। और जनाब फ़ातिमा बिनते असद ज़ौजा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए अल्लामा अब्दुल्ला ने कहा कि खुदा का शुक्र है, मुसलमानों में अब तक कोई ऐसा फ़िरका पैदा नहीं हुआ जो आपके ईमान को शक और इनकार की नज़र से देखता हो। और मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब ने सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में ये लिखा है कि जनाबे असद जो हैं वो हज़रत हाशिम के फ़र्जंद थे। इस लिहाज से जनाबे फ़ातिमा बिनते असद हज़रत हाशिम की पोती होती हैं और रसूल अल्लाह की फूफी होती हैं, और अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा होने की बिना पर रसूल करीम की चची हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में आए थे तो इन्हीं मोहतरमा यानी जनाब फ़ातिमा बिनते असद की आगोश पैगंबर जैसे हादी की कहवारा तरबियत बनी। इन्हीं की आगोश मोहब्बत और शफ़क़त में पैगंबर ने परवरिश पाई। अगर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने तरबियत और निगहदाश्त में बाप के फ़राइज़ अंजाम दिए तो जनाब फ़ातिमा बिनते असद ने इस तरह मोहब्बत और दिलसोजी से देखभाल की थी कि यतीम अब्दुल्ला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। इनकी मोहब्बत का ये आलम था कि जब खुरमे के दरख्तों में फल आता तो सुबह सवेरे उठकर खुरमों के कुछ दाने चुन कर अलहदा कर देती थी, अलहदा करके रख देती, और जब उनके अपने बच्चे इधर उधर हो जाते थे तो फिर वो खुरमे हुजूर को पेश करती, और जब दस्तरखान बिछता तो उस पर से कुछ खाना उठा कर अलग रख देती कि अगर किसी वक्त हुजूर खाना तलब करें तो उन्हें दे सकें। पैगंबर इस्लाम भी उन्हें माँ समझते, माँ कहकर पुकारते और माँ ही की तरह इज्जत और एहतराम करते। नबी करीम ने उनकी शफ़क़त और मोहब्बत का एतराफ़ करते हुए फ़रमाया कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बाद उनसे ज़्यादा कोई मुझ पर शफ़ीक़ और मेहरबान न था। हुजूर उनकी मादराना शफ़क़त और मोहब्बत से इतने मुतासर थे कि मनसब रिसालत पर फ़ाइज़ होने के बाद अपने फ़राइज़ मनसबी से वक्त निकालते, उनके यहाँ तशरीफ़ लाते और अक्सर दोपहर के औकात उनके यहाँ गुजारते। इब्ने साद ने लिखा है कि रसूल अल्लाह उनकी ज़्यारत को आते और दोपहर को उनके यहाँ इस्तराहत फरमाते थे। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद की अजमत यह है कि आपका शुमार साबिकात में होता है। इब्ने सब्बाक मालिकी ने तहरीर किया है कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद इस्लाम लाई, पैगंबर के साथ हिजरत की, अहले तारीख़ आपका शुमार साबिकुल इस्लाम ख़वातीन में करते हैं। और जनाब फ़ातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम जैसा कि हम सब जानते हैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में रहीं। आपके ईमान व अकीदे अजमत व जलालत के लिए बास शवाहिद मौजूद है, जिनमें अहम तरीन वाक़िया वो है जो बारहा जिक्र होता है कि जब मौलाए कायनात की विलादत का वक्त करीब आया और शहजादी खाना काबा के करीब तशरीफ़ लाई, दुआ के लिए हाथ बुलंद किया है, परवरदिगार मैं तुझ पर जो रसूल और किताबें तूने भेजी हैं उन सब पर ईमान रखती हूँ, और मैं अपने जद्दे बुजुर्गवार हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों की तस्दीक करती हूँ जिन्होंने खाने काबा बनाया था। बस मैं इस घर के हक़ का और उसके बनाने वाले के हक का और उस फर्जंद के हक का वास्ता देकर सवाल करती हूँ वो फर्जंद जो मुझसे बातें करता है, और मुझे यकीन है कि वो तेरी अजमत व जलाल की आयात में से है। उसका वास्ता देकर सवाल करती हूँ, मेरी मुश्किल आसान कर दे। दीवार काबा शक हो गई, जनाब फातिमा बिनते असद अंदर तशरीफ़ ले गई। अल्लाह पर ईमान का वाज़े लफ्ज़ों में उन्होंने ऐलान किया है, इसके बाद किसी कुफ्र व शिर्क का एहतमाल पैदा ही नहीं हो सकता। शहज़ादी की जलालत कदर का ये आलम है कि जब उनकी वफ़ात हुई और मौलाए कायनात गिरिया करते हुए हुजूर के पास पहुँच कर इत्तला देते हैं कि मेरी मादरे गिरामी का इंतकाल हो गया, तो नबी ने आप दीदा होकर फरमाया था, खुदा की कसम वो मेरी भी माँ थी। और उसी वक्त नबी करीम उठ खड़े हुए, सहाबा भी सर झुकाए हुए नबी के साथ हो लिए। जब नबी उनके यहाँ आए तो अपना पैराहन उतार कर दिया और फरमाया कि ये पैराहन बतौर कफन उन्हें पहना दिया जाए। जब जनाजा तैयार हुआ तो रसूल अल्लाह ने आगे बढ़कर कांधा दिया, कभी मैयत के सराहने की तरफ कभी पाईती की तरफ से कांधा देते, और जन्नतुल बकी तक पा बरहना जनाजे के साथ रहे। हुजूर ने चंद आदमियों को कब्र खोदने के लिए मामूर फरमाया था। जब कब्र खुद चुकी तो हुजूर करीम खुद बनफसे नफीस कब्र में उतरे, उसे किनारों से खोद कर कशादा किया, कुछ देर कब्र में लेटे और बाहर आने के बाद रोते हुए फरमाया, ए मादरे गिरामी, खुदा आपको जजाए खैर दे, आप बेहतरीन माँ थीं। पैगंबर के इम्तियाजी सलूक को देखकर कुछ लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, किसी और के लिए ये चीज़ें आपसे देखने में नहीं आईं। तो नबी ने फरमाया, मेरे चचा के बाद इन खातून के सबसे ज़्यादा मुझ पर एहसानात हैं, ये खुद भूखी रहती मुझे खाना खिलाती हैं, खुद पुराने कपड़ों में गुजारा करती मगर मुझे अच्छा लिबास पहनाती, खुद तकलीफ़ें उठाती और मेरे लिए राहत और आराम का सामान करती। आयतुल्ला दस्तेगाह फिराजी ने किताब बरज़ख़ में बयान किया कि हुजूर ने अपने पहरहान का कफन दिया, कब्र में लेटे दुआएं पढ़ी और दफन के बाद सरहाने खड़े होकर हो गए थे। कुछ देर के बाद ऊंची आवाज़ से फरमाया था, अब ना का यानी आपका बेटा। किसी ने पैगंबर से जब सबक पूछा है तो आपने फरमाया कि एक दिन कयामत की बरहनगी से मुतालिक गुफ्तगू हो रही थी, जनाब फातिमा बिनते असद ने जब ये सुना तो गिरिया फरमाया और मुझसे ख्वाहिश की थी कि मैं अपना पैरहन बतौर कफन उनको दूँ। फिशार कब्र से डर रही थी, इसी वजह से मैं उनकी कब्र में लेटा और दुआएं की। और ये जो कहा अपना का यानी आपका बेटा, तो फरिश्ते उनसे अल्लाह के बारे में सवाल करते हैं तो उन्होंने कहा कि अल्लाह, जब पैगंबर के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर जब इमाम के बारे में पूछा गया तो जवाब नहीं दे सकी, तो मैंने कहा कहिए आपका बेटा अबना का यानी हज़रत अली अलैह सलाम। अहले सुन्नत के आलिम शेख अली अल मरजूक़ी ने तहरीर किया कि पैगंबर इस्लाम ने फातिमा बिनते असद को दफन किया, अपने पैरहान का कफन दिया और इस मौके पर हाँ हज़रत को ये फरमाते हुए सुना गया कि अबना का आपका बेटा। इससे मालूम होता है कि गदीर कुम से पहले ही मौलाए कायनात की खिलाफत का वाज़े ऐलान था, और अहले सुन्नत के आलिम शेख अली अल मरजूक़ी ने भी इसी वाक़े को, ये जो अभी हमने बयान किया कि हज़रत ने बुलंद आवाज़ से फरमाया था अपना का आपका बेटा, इस वाक़े को अहले सुन्नत के आलिम ने भी बयान किया है। बहरहाल जनाब फ़ातिमा बिनते असद जैसी जलील क़दर शख्सियत जो 3 दिन खाना काबा में मेहमान रहीं, वो क़यामत के हालात सुनकर खौफज़दा हो गईं, और नबी करीम भी उनके लिए इस तरह के अमाल बजा लाते हैं। गौर का मकाम है कि जनाब फातिमा बिनते असद मौलाए कायनात की मादरे गिरामी हैं, मगर वो भी आमाल से बेनियाज नहीं। तो मौला अली अलैहि सलाम से मोहब्बत का दावा करने वाले और बग़ैर आमाल के सिर्फ दावा मोहब्बत पर मुतमईन रहने वालों को गौर फिक्र करना चाहिए। रसूल अल्लाह की तरफ से जनाब फातिमा बिनते असद के जनाजे पर होने वाले खसूसी अहतमाम दुनिया देख ले कि ये खातून आम औरतों की तरह मुसलमान नहीं हैं, इनका इस्लाम और ईमान ख़ास अहमियत का हामिल है और इनका अकीदा मखसूस इखलास का हामिल है। नावाकिफ़ और मुतअस्सिब अफराद पर जनाब फातिमा बिनते असद का इस्लाम पूरी तरह वाज़े हो जाए और ये समझ सकें कि आपका खुदा पर ईमान आपके शौहर के मुसलमान होने की वाज़े दलील है, इसलिए कि इस्लामी कानून की बिना पर मुसलमान औरत किसी गैर मुस्लिम की ज़ौजियत में नहीं रह सकती, खुदा की तरफ से कुरान में ममानियत की गई है और ये इम्कान नहीं है कि रसूल अल्लाह हुक्म कुरान को टाल दें। लिहाजा नबी के तर्ज़ अमल का मतलब यह है कि नबी की नज़र में जिस तरह जनाबे फातमा बिनते असद अलैहिस्सलाम मुसलमान थी, इसी तरह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुसलमान मोमिन कामिल थे। अब आते हैं उन रवायात की तरफ जो मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में वारिद हुई हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि इसका खुलासा यह है कि एक शख्स ने मौलाए कायनात से कहा कि या अमीर अलमोमिनीन, आप अल्लाह की तरफ से आला मकाम पर फ़ाइज़ हैं, लेकिन आपके बाबा दोजख की आग में क्यों? ये सुनना था कि मौलाए कायनात का रंग मुतग़य्यर हो गया और फरमाया कि खुदा तेरे मुंह को तोड़े, मुझे कसम है उसकी जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरक नबी बनाया, अगर मेरे बाबा इस रूए ज़मीन पर अगर मेरे बाबा इस रूए ज़मीन पर तमाम गुनाहगारों की शिफ़ात करें तो खुदा उनकी शिफ़ात को कबूल फरमाएगा। आपने यानी मौलाए कायनात ने मज़ीद फरमाया, क्या तुम गुमान करते हो कि उसका बाप दोजख में होगा कि जो जन्नत और दोजख को तकसीम करने वाला है? मुझे पैगंबर बरहक की कसम, कयामत के रोज़ मेरे बाबा का नूर बाकी तमाम खलायक के अनवार पर छाया हुआ होगा सिवाय नूर मोहम्मद और फातिमा और हसन और हुसैन और बाकी आइम्मा मासूमी अलैहिस्सलाम के। याद रखो, नूर अबू तालिब हमारे नूर से है जो परवरदिगार ने हज़रत आदम को खल्क करने से 2000 साल पहले खल्क फरमाया था। फिर इमाम ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। एक शख्स ने इमाम से सवाल किया, क्या अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमिन थे? इमाम ने फरमाया हाँ। उस शख्स ने कहा, बाज़ लोग उन्हें काफिर समझते हैं, नाऊज़ु बिल्ला। ये सुनना था कि इमाम का दिल तड़प गया, एक आह भरी और फरमाया, ताज्जुब है, अल्लाह ने नबी को ये हुक्म दिया कि किसी मुसलमान औरत को काफिर के निकाह में नहीं रहने दें, और जनाबे फातमा बिनते असद जो इस्लाम में सबकत करने वाली ख़वातीन में सी थी, वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मरते दम तक उन्हीं की ज़ौजियत में रहीं। यानी रसूल अल्लाह ने उन्हें ताहयात हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत से अलग नहीं किया। इमाम के बयान से साफ वाज़े हो जाता है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर एतराज़ करना दर हकीकत रसूल अल्लाह पर एतराज़ करना है। जनाब फातिमा के ईमान में किसी को शक नहीं, और ना ही किसी ने उनके खिलाफ़ जाली रिवायतें वज़ा की हैं, और ना ही कोई मौर्रख आज तक इस बात का काहिल हुआ कि नबी ने इस रिश्ते ज़ौजियत को मुनक़ता कर दिया था। इसका मतलब यह है कि नबी की नज़र में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान पूरी तरह साबित था, वरना नबी किसी तरह भी हुक्म कुरान की मुखालफत नहीं कर सकते थे। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर हमला करना इतनी बड़ी जुर्रत है जिसमें यह तस्लीम करना होगा कि नाऊज़ु बिल्लाह रसूल अल्लाह वही खुदा की मुखालफत करते थे। अल्लामा अब्दुल्लाह अल-ग़ेनीज़ी कहते हैं, क्या दुनिया का कोई अक्लमंद ये तसव्वुर कर सकता है कि काफिर के बच्चे की विलादत के लिए खाना काबा की दीवार शक होकर रास्ता दे? वो खाना काबा जिसकी तामीर के बाद खलील खुदा हज़रत इब्राहिम को दोबारा उसकी तदहीर का हुक्म हुआ था। ऐसा तसव्वुर करना खलील यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ज़बरदस्त हमला और अज़मत काबा पर बोहतान है। खाना काबा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान की बेहतरीन दलील है, और शायद ये भी एक मसलहत रही हो कि मशीहत ने आपकी विलादत के लिए खाना काबा का इंतखाब किया। साहिब मनाकिब ने नकल किया है कि विलादत के बाद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने बच्चे को गोद में लेकर बारगाह इलाही में अर्ज़ की थी, ऐ तारीक रात और चमकते चाँद के खालिक व मालिक, अब तू ही फ़ैसला कर इस बच्चे का नाम क्या होगा। इसके जवाब में ये दो शेर नाजिल हुए। अली इब्ने हम्माम की रिवायत के मुताबिक उनकी रिवायत की बिना पर तख्ती पे लिखे हुए थे, और फजल इब्ने शाजान की रिवायत की बिना पर ज़बाने हातिफ पर थे, और वो शेर ये थे, तुम्हें एक पाको पाकीज़ा मुंतखब और पसंदीदा बच्चा दिया गया, इसका नाम बुलंदोबाल और इसमें इलाही से मुश्तक है यानी अली है। इसके बाद पाँचवें इमाम का ज़माना आता है। इमाम ने फरमाया, अगर सारी दुनिया का ईमान तराजू के एक पल्ले में हो और हज़रत अबू तालिब का ईमान दूसरे पल्ले में हो तो अबू तालिब का पल्ला भारी रहेगा। हज़रत अबू तालिब इस्लामी बुनियादों के मजबूत करने वाले और इस्लाम को दुनिया से रोशनास कराने वाले थे। इमाम ने फरमाया कि मौलाए कायनात अपनी ज़िंदगी में हज़रत आमना, हज़रत अब्दिल्ला और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ से हज करने का हुक्म दिया करते थे, और बाद के लिए भी वसीयत फरमा गए थे। इमाम ने मौलाए कायनात के तर्ज अमल से इस्तदलाल करके ये वाज़े कर दिया कि हज जैसा अहम फरीज़ा जो अरकान इस्लाम में शुमार होता है, ये किसी ऐसे इंसान की तरफ से नहीं हो सकता जिसका इस्लाम से कोई रिश्ता ही ना हो। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान इरफान और बसीरत का नतीजा था। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम दुनिया से मुस्लिम और मोमिन उठे। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अपने ज़माने में इतना मौका मिल गया था कि तालीमात और अहकाम इलाही को वाज़े करके हक्कानियत की शुआएँ और हिदायत की किरणों को आलम के हर इम्कानी हिस्से तक पहुँचाएँ। एक शख्स ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल कर लिया कि क्या अबू तालिब अलैहिस्सलाम नाउज़ु बिल्ला जहन्नुम में? इमाम ने फरमाया, ये झूठ है, ऐसी कोई ख़बर जिब्रील अमी नहीं लाए। अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मिसाल अस्हाबे कहफ की है जिन्होंने अपने ईमान को छुपाया, खुदा ने उन्हें दोहरा अजर अता किया। हज़रत अबू तालिब उस वक्त तक दुनिया से तशरीफ़ नहीं ले गए जब तक उन्हें जन्नत की बशारत नहीं दे दी गई। इसके बाद इमाम ने नहायत ताज्जुब से फरमाया, आखिर ये कैसी बातें हैं? एक मर्तबा इमाम ने यूनुस इब्ने नबाता से सवाल किया, लोग हज़रत अबू तालिब के बारे में क्या ख्याल कर लोगों का हज़रत अबू तालिब के बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि अर्ज़ की कि लोग कहते हैं वो जहन्नुम में है, नाउज़ु बिल्ला। इस पर इमाम ने गुस्से से फरमाया, ये दुश्मन खुदा झूठे हैं, हज़रत अबू तालिब अम्बिया और सिद्दीकीन और सालहीन और शहदा के साथ हैं और इन हजरात से बेहतर कोई रफ़ीक मुमकिन नहीं। एक मर्तबा एक शख्स ने सवाल किया कि लोग हज़रत अबू तालिब को नाउज़ु बिल्ला काफिर ख्याल करते हैं, इमाम ने फरमाया वो झूठे हैं, अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो पैगंबर की नबूवत का इकरार करते हुए कहते थे, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा ही नबी पाया है जैसे मूसा थे जिनका तذکرہ पहली किताबों में मौजूद है? कभी इमाम फरमाते कि आखिर अबू तालिब अलैहिस्सलाम कैसे काफिर हो सकते हैं जिनका कौल यह है कि दुनिया जानती है मेरा बेटा ना गलत को है ना दरोग को, वो ऐसा मुबारक है जिसके तुफैल बारिश बरसती है, वो यतीमों बेवाओं का वाली और वारिस है। मकसद ये है कि वो इंसान किस तरह काफिर फ़र्ज़ किया जा सकता है जो रसूल को नबी सादिक बाबरकत फ़याज़ बेवाओं का वारिस यतीमों का वाली और वजी शख्सियत तस्लीम करता हो। इमाम फरमाते कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अशआर बहुत ज़्यादा महबूब थे, मौलाए कायनात चाहते थे कि इन अशार की तदवीन हो जाए ताकि पढ़े जाएं और मुश्तहिर हो जाएं। आप अक्सर फरमाते उनके अशार खुद पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, इसलिए कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम दीन खुदा पढ़ते, उनके अशार में बड़ा इल्म है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दीगर शहादतों के अलावा खुद ये हदीस भी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अजीम दर्जे और बुलंद मंजिल की निशानदही कर रही है कि इमाम चाहते थे कि उनके अशार की तालीम दी जाए, उन्हें हिफ्ज़ किया जाए ताकि रिसालत का इरफान हासिल हो और मज़हबी मालूमात में इजाफा हो। साथ में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से इब्ने मंसूर ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया, लेकिन इस सवाल का ताल्लुक़ हज़रत अबू तालिब के ईमान से नहीं था। हदीस के अंदाज़ से ज़ाहिर होता है कि सवाल करने वाला हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान की तरफ से बिल्कुल मुतमईन है, बल्कि वो ये जानते हैं कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया की वसीयतों के अमानतदार हैं, लिहाजा ऐसा इंसान काफिर नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सवाल ईमान से मुताल्लिक नहीं किया था, बल्कि सवाल ये था कि क्या अबू तालिब अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह के लिए भी हुज्जत थे? तो इमाम ने फरमाया, नहीं, वो अमानतदार वसाया मुरसलीन थे जिन्हें रसूल अल्लाह तक पहुँचा दिया था, यानी रसूलों की वसीयतों के अमानतदार थे, वो पैगंबर के अहकाम के मोतरफ थे और इसीलिए तमाम वसाया उनके हवाले कर दिए थे। आठवें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को अबान इब्ने महमूद ने लिखा कि मैं आप पर फ़िदा हो जाऊँ, अब तो मुझे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान में शक होने लगा है। इमाम ने जवाब में फ़ौरन तहरीर फरमाया, जो लोग हिदायत वाज़े होने के बाद रसूल से इख्तलाफ़ करेंगे और मोमिनीन के रास्ते को तर्क कर देंगे उनका बुरा हशर होगा, वो जहन्नुमी हैं। अगर तुमने अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान का इकरार ना किया तो तुम्हारा अंजाम भी जहन्नुम होगा। इमाम के जवाब से मालूम होता है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान में शक करना गोया रसूल अल्लाह की शख्सियत का इनकार है। जो कोई उनके ईमान में शक करता है तो उसका मतलब है वो रसूल अल्लाह का मुखालिफ है और हिदायत के वाज़े होने के बाद भी उससे चशमपोशी करता है। इसके अलावा उनके ईमान में शक करना नबी को अज़ियत देना है और नबी को अज़ियत देने वाला अज़ाब इलाही का मुस्तहक है, क्योंकि इरशाद इलाही ये सूरह अहज़ाब, जो लोग खुदा और रसूल को अज़ियत देते हैं उन पर दुनिया और आखरत में लानत और दर्दनाक عذاب مہیا کیا گیا ہے۔ گیارہویں امام کا زمانہ آتا ہے۔ گیارہویں امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آبائے کرام کے حوالے سے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے رسول کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی تائید دو قسم کے شینوں سے کی ہے، کچھ بظاہر آپ کی نصرت کرتے ہیں، کچھ پوشیدہ طور پہ نصرت کرتے ہیں۔ جو لوگ پوشیدہ طور پہ نصرت کرتے ہیں ان کے سردار اور ان میں سب سے افضل حضرت ابو طالب ہیں، اور جو لوگ بظاہر نصرت کرتے ہیں ان کے سردار ابو طالب علیہ السلام کے فرزند حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ امام نے یہ بھی فرمایا کہ ابو طالب علیہ السلام کی مثال مومن آل فرعون کی ہے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔